हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी आए हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है, करतलवनी से हम दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैसे तो आप सबको कभी ना कभी तनाव का अनुभव हुआ ही होगा, लेकिन इस सेशन के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, जो परमात्मा का दिव्य ज्ञान है, हम दीदी जी के माध्यम से सुनेंगे। वैश्विक एकता से कैसे हमारे अंदर तनाव से मुक्त होकर जीवन जीने की कला आ जाती है, वो हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी के द्वारा। सभी करतल ध्वनि से एक हाथ के ताली से ऐसे करें। हाँ ठीक है, अभी जो भी बच्चे अभी तो आए नहीं है, आए हो तो डायमंड हॉल के पीछे चले जाएंगे, आपके वहाँ पर है गेम्स।
ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने आज प्रातःकालीन सत्रों में राजयोग के विषय में सुना, उसका अभ्यास भी किया, और अभी का ये जो सत्र है आपका, आपके दिन प्रतिदिन की समस्याओं से संबंधित। हम सभी को तनाव होता है। कोई है आप में से जो कहे मुझे तनाव नहीं होता है, ना हुआ है, ना है, ना होगा, तो हाथ उठा सकते हैं। कोई एक हाथ उठा रहे हैं, तो मेजॉरिटी को तनाव होता ही है। 99% जो है वो तनाव का अनुभव करते हैं। और आज वर्तमान समय में स्थिति ऐसे है कि कहते हैं तनाव से हो गई है दोस्ती, इस कदर तनाव होता है तनाव के न होने पर। तो ऐसे लगता है कि क्या हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जो हमें टेंशन नहीं हो रहा है, कुछ कर रहे हैं माना टेंशन जरूर होगा। तो कहा गया कि 18वीं सदी ज्ञान में उन्नति की सदी थी, 19वीं सदी को आविष्कारों की सदी कहा गया। तो मनुष्य ने बहुत नए नए आविष्कार किए, जिससे सुख सुविधा के साधन हमें जीवन में मिलने लगे। परिणाम स्वरूप जो 20वीं सदी आई वो तो सुख की सदी होनी चाहिए, लेकिन उसे कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं, तो अगर यही हमारी जीवन शैली रही तो ये 21वीं सदी कौन सी सदी होगी, कौन सी सदी हो जाएगी? एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ले आते हैं, तो फिर ये सदी शांति की सदी भी हो सकती है। तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम कौन सी सदी में जीना चाहते हैं, कौन सी सदी में जीना चाहेंगे। पीस की सदी में, शांति की सदी में, तो फिर हमें अपनी जीवन शैली को बदलना जरूरी है। तो ये देखा गया कि आज बच्चों को भी तनाव होता है, जो खेलने मौज करने की उम्र मानी जाती थी उसमें भी तनाव प्रवेश हो चुका है। तो अपने यहाँ एक मेडिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो एक शहर में स्वास्थ्य मेला लगाया गया, तो वहाँ पर अनेक स्टॉल थे। उसमें एक स्टॉल था जिसमें एक कुंड बना हुआ था और उसमें ये कहा गया कि यहाँ आप अपनी बुराई का दान करो, यानी अगर कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है या जो भी उसके अंदर बुराई है उसका दान करना है। तो एक माता पिता अपने बेटे के साथ वो मेला देख रहे थे और जब वो स्टॉल पर पहुंचे तो माँ को बहुत अच्छा लगा। तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो, तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, डॉक्टर तुम्हें मना करते हैं, तुम अपनी चॉकलेट यहाँ दान कर दो। तो बेटे ने कहा माँ मुझे सोचने दो, मुझे क्या दान करना है। फिर एक मिनट के बाद बोलता है मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूँ, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होता है। तो आज बच्चों को अपने कैरियर के हर मोड़ पे कंपटीशन फेस करना पड़ता है, चाहे एडमिशन कराना हो, चाहे जो भी एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन देना है। तो तनाव हमें क्यों होता है, उसका कारण है स्ट्रेस के लिए कहते हैं प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी, यानी प्रेशर्स जब ज़्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है। प्रेशर्स यानी समस्याएं ज़्यादा हैं और उसकी तुलना में अगर हमारी सामर्थ्य कम है या परिस्थितियों की मांग ज़्यादा है और उसकी तुलना में हमारी क्षमता कम है, तो हम जो महसूस करते हैं वो तनाव है। तो ये एक प्रकार का दर्द है जो हमें ये संदेश देता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा, तभी हम वो परिवर्तन ला सकते हैं। और आज प्रेशर्स हमारे ऊपर चारों तरफ से आते हैं, भूतकाल में हमारे जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसने क्यों किया, ऐसा इसने क्यों कहा। छोटी बात होती है जब वो हुई होती है, लेकिन हम उसे सोच सोच कर बड़ा रूप देते हैं, यानी राई को हम पहाड़ बना देते हैं। ये बहुत हल्की सी चीज़ है, इसको मैंने हाथ में पकड़ा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसको अगर मैंने घंटों पकड़ लिया इसी पोजीशन में तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा, और लंबे समय तक मैं इसे पकड़ लूंगी तो मेरा हाथ सुन्न भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने कितना लंबा समय इसे पकड़ा। तो ऐसे ही कोई भी बातों को हम पकड़ कर रख लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसे, हम लेट गो नहीं करते, यानी पास्ट को पास्ट नहीं करते, तो वो हमें वर्तमान में भी दर्द देती है, तनाव देती है। कुछ लोगों को भविष्य की बहुत चिंता होती है, क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा। हाँ, जैसे बच्चों की चिंता है, उनकी नौकरी की, पढ़ाई की, हेल्थ की, कोई भी चिंता हो सकती है, अपने भी रिटायरमेंट के बाद की चिंता, धन की चिंता, कई प्रकार की चिंताएं मनुष्य के जीवन में लगी रहती हैं, और प्रेजेंट की अपनी समस्याएं होती हैं। तो कुल मिलाकर व्यक्ति पर कोई ना कोई प्रेशर रहता ही है, और जब हम प्रेशर्स में होते हैं तब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हम कैटाकोलामिन्स कहते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, यानी स्लो पॉइजन का काम करते हैं और लंबे समय तक अगर तनाव बना रहता है तो शरीर में बीमारियां होती हैं जिन्हें हम साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं। आज 70% बीमारियां मेडिकल साइंस में साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर एक अध्ययन किया गया, उनको उनकी पर्सनालिटी के अनुसार दो ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया ना जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, टेंशन में आ जाते थे, अपने मन को शांत नहीं रख सकते थे, स्थिर नहीं रख सकते थे। दूसरे ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो इसके ओपोजिट थे, अपने मन को शांत रख सकते थे, एकाग्र कर सकते थे, धैर्य रख सकते थे, और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो देखा कि अभी इस आयु में दोनों ही ग्रुप के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सामान्य था। लेकिन क्योंकि एक स्टडी थी तो इसीलिए हर 10 साल में उनको चेकअप के लिए बुलाते थे, तो ये देखा गया कि 50 साल की उम्र तक आते आते जो पहला ग्रुप था जिसमें जल्दी जो तनाव में आ जाते थे, उनमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक बीमारियां हो चुकी थी। यानी दूसरे ग्रुप में 5 लोग बीमार हुए तो पहले ग्रुप में कितने हुए 25। तो किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी, किसी को डायबिटीज की बीमारी, ये सब साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। तो इसीलिए उनके मृत्यु की संभावना भी 5 गुना ज्यादा थी। और आप देख रहे हैं जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कितने प्रभाव आते हैं, सभी सिस्टम उससे प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए। अगर हम अपने तनाव को कम नहीं करते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये बीमारियां शरीर में शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा असर हमारे हार्ट पर आता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और अगर कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं और तनाव होता है तो वो आर्टरीज और सिकुड़ जाती हैं, इससे ब्लड फ्लो कम होता है, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है और चेस्ट पेन हो सकता है ना, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, या फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो एक बड़ा कारण है हृदय रोगों का तनाव। और भी कारणों से हृदय रोग होता है लेकिन स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर। फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका असर आता है, एसिड ज़्यादा बनता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, अल्सर्स होते हैं, पेट में दर्द होना, डायरिया होना। हमारे नर्वस सिस्टम पर इसका असर आता है, उसकी वजह से सिर दर्द होना, नींद नहीं आना, थकान बने रहना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों लोग आज दुनिया में डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं। फिर लोग अपने तनाव को कम करने के लिए व्यसनों का सहारा लेते हैं ना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, और उससे स्वास्थ्य पर और ही बुरा असर होता है ना, और परिवार का भी तनाव बढ़ा देते हैं साथ के साथ। फिर डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। और जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, इम्यूनिटी। कोरोना के बाद हम सब इम्यूनिटी से परिचित हैं, कोविड के समय जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनके लिए कोविड कोई बीमारी ही नहीं थी, और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी उनके लिए ये जानलेवा था। तो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है, अगर वो क्षमता कम हो जाती है तो फिर कोई भी वायरसेस, बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में है वो हमको इन्फेक्शन कर देते हैं। तो हम सभी अपने जीवन में अनुभवी हैं तो आप सबसे पहले हम शेयर करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब आप तनाव का अनुभव करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ में है, चाहे जहां आप काम करते हैं वहां से संबंधित हैं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित हैं। तो आप कोई भी शेयर कर सकते हैं, माइक दें। जो आगे बैठे हैं वो बोलेंगे तो सुनाई देगा, थोड़ा जोर से बोलेंगे। कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं जब आप तनाव का अनुभव करते हैं? हाँ जी, जोर से बोलना पड़ेगा या तो माइक। हम शांत। हाँ, तो ये अपनी इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि गुस्सा ज्यादा आता है। अगर किसी से उम्मीद रखी और वो पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है और फिर टेंशन होता है
और वो चलता रहता है दिमाग में रात भर। हाँ, बात
फिर लंबा टाइम चलता है,
लंबा टाइम चलता है, वो मुझे तनाव का कारण बनता है।
ठीक है, और कोई? और कोई?
ओम शांति। जीवन में जब कभी आर्थिक समस्याएं या शारीरिक समस्याएं अचानक से दस्तक दे देती हैं तो उस समय कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति परेशान हो जाती है। उस स्थिति में हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ये परिस्थितियां हर एक व्यक्ति को परेशान करती है, चाहे कोई भी
प्रॉब्लम, कोई भी
हेल्थ प्रॉब्लम, आर्थिक और शारीरिक दोनों ही, इनसे मानसिक समस्या पैदा होती है।
फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन भी होते हैं तो भी। सही बोल रहे हैं। और बहनों की तरफ से कोई? हाँ, अभी यहाँ शांति वन में बैठे हैं इसलिए तनाव मुक्त हैं बिल्कुल ऐसे।
जब कोई अपना अचानक साथ छोड़ के चला जाता है उस टाइम पे तनाव,
मृत्यु हो गई या समझो कहीं दूर चले गए, कई वैसे भी छोड़ देते हैं है ना, तो ये भी एक रीजन बनता है कि उनसे हमें बहुत लगाव है और ऐसा व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। और कोई?
ओम शांति। जब हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं और जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कभी हम फुलफिल नहीं कर पाते तो एक स्ट्रेस की होता है,
उनके प्रेशर्स को डील नहीं कर पाते। तो
दूसरा ये कि जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं कॉर्पोरेट्स में या फैमिली में जिनसे हमने मतलब कुछ हमने पूरा किया और जब उनकी बारी आई तो एक्स वाई जेड रीजन नहीं कर पाता, तो मन में वही बात घूमती है कि मैं क्यों ऐसा, तो एक वही माइंड में कि भाई ये लोग हमने तो अपना वादा पूरा किया है जो भी है मतलब एज ए फ्रेंडशिप या एज ए मैनेजमेंट, तो लेकिन उनकी तरफ से वो चीज नहीं आ पाई, वही बात माइंड में घूमती है कि वही चीज, तो उस तनाव
इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और किसी को?
ओम शांत। फैमिली स्ट्रेस, एक दूसरे पे वो जो उम्मीदें रख रहे हैं ना, विश्वास रख रहे हैं कि ये इससे ये होगा इससे ये होगा, उसमें जब दिक्कतें आती है तो फैमिली की टेंशन, बिजनेस की टेंशन और पूरा लाइफस्टाइल टेंशन में चले जाता है।
एक्सपेक्टेशंस होती है अपने।
जब परिवार में झगड़े वगैरह होते हैं तब भी टेंशन होती है, या कोई अगर कोई जानने वाला हो आपके ऊपर कोई झूठे मुकदमे कर दे या ऐसी कोई बात हो तब भी स्ट्रेस होता है।
आपस में संबंधों में ना मतभेद हो जाता है, विचार नहीं मिलते तो फिर ऐसा होता है।
ओम शांति। क्या है कि पत्नी या बच्चों से आदमी बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक लॉजिकल बात आदमी सोचता है कि इतनी बड़े प्यार से हम समझा रहे हैं, बड़ी लॉजिकल बात है और ये समझ जानी चाहिए, वो नहीं समझ पाते या जिद में आ जाते हैं तो भी
टेंशन होती है। सही है। और?
ओम शांति। जो हम निर्णय लेते हैं वह अधूरे रह जाते हैं, मनो 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 ही चलते रहते हैं, तो तो हमारे दिमाग पे टेंशन इस बढ़ जाती है कि हमने काम जो लिया था उसका कोई निर्णय नहीं लिया, पूरा नहीं किया गया, तो हमने फिर थकावट हो जाती है, सारा शरीर बदन में दर्द हो जाता है, चक्कर आने हो जाते हैं, हम उसके बारे में विचार नहीं करते, हम उसका अंदर ही विचार ही चलते रहते हैं, रामायण बढ़ जाती है, तो इस करके हम मतलब इससे मनो पूरी हो जाती है।
तो सभी आप अच्छे अच्छे कारण बता रहे हैं, बस अभी ये लास्ट है, फिर सेशन भी पूरा करना है।
ओम शांति बहन जी। क्या होता है, हम लोग जब काम करते हैं कोई भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमारे जो बड़े अधिकारी रहते हैं वो हमारी छोटी जो हमारी हमारा पद छोटा होता है, तो वो हम लोग को किसी भी बुरी तरीके से बोल देते हैं, तो वो दिमाग में चलता रहता है कि क्या छोटे पद वालों को क्या हमेशा सुनना ही पड़ेगा, तो वो स्ट्रेस क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा रहता है। और मेरा बेटा है जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है, तो उसके कारण हाँ जब वो आता है तो अलग ही वाइब्रेशन आते हैं मुझे, मतलब नेगेटिव, तो मुझे उसको देख के पता नहीं क्यों गुस्सा आता, क्योंकि वो मेरी बात ही बिल्कुल नहीं मानता है, ना पढ़ता है ना कुछ है, तो मुझे कोई भी टेंशन होता है तो 3-4 दिन तक वो दिमाग में चलता ही रहता है।
तो बच्चों के कारण भी होता है, और जहाँ काम करते हैं अगर वहाँ पे कोई अधिकारी ऐसे हैं तो भी। तो बस अभी पूरा हो गया अभी ना। तो अगर हम फैमिली लाइफ में देखें तो कुछ बातें, ये अमेरिका में एक स्टडी की गई, होम्स एंड राहे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने हमारे जीवन में जो आम घटनाएं घटती हैं, जो जीवन में परिवर्तन लाने वाली होती हैं, तो उसमें देखा कि जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से तनाव होता है। जैसे फैमिली लाइफ में जो आम घटनाएं सभी के साथ होती हैं, चिल्ड्रन, जैसे बच्चों की बात अभी बहन कर रही थी ना, बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, फिर गलत संग में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो माँ बाप को तनाव होता है। फिर हमारी बच्चों से अपेक्षाएं बहुत होती हैं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, जो भी ऊंचे से ऊंचा कैरियर बनाए, लेकिन अगर वो योग्य हैं तो आपकी अपेक्षा को पूरा करते हैं, पर अगर बच्चे योग्य नहीं हैं या फिर उनकी वो रुचि ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते जो आप चाहते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों पर प्रेशर आता है, दबाव पड़ता है, और कई बार बच्चे फिर गलत कदम उठा लेते हैं। यहाँ राजस्थान में कोटा शहर है जो कोचिंग्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर लाखों बच्चे हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चे सुसाइड करते हैं। हर साल अखबारों में ऐसी न्यूज़ होती है, पिछले साल भी एक बच्चे ने सुसाइड किया, और उसने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि पिताजी मैं इस बार भी नहीं कर पाया, है ना। तो उसने नीट का एग्जाम तीसरी बार दिया था और तीसरी बार भी वो फेल हो गया। तो इसका वो था कि मेरे माता पिता कितने निराश होंगे, तो वो जैसे कि वो उस बात को वो फेस नहीं कर पाते। बच्चे कई बार भावनात्मक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते हैं, तो यहाँ पर माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर वो बच्चा उतना योग्य नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम उनका उसी तरह से मार्गदर्शन करें, और जहाँ उसकी जैसी रुचि है उसी तरह से उसको हम प्रोत्साहन दें ना। अगर हम वही चाहेंगे और वो नहीं कर पाएगा तो कई बार बच्चे फिर ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारा कहना माने तो फिर हमें उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार देने होंगे, समय देना होता है, बच्चों को समझाना होता है, तब वो बच्चे जो हैं फिर हमारा वो कहना जैसा हम चाहते हैं वैसा मानते हैं। डाइवोर्स एंड सेपरेशन, है ना, फैमिली लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों में अहम का टकराव होता है कई बार, दोनों फिर साथ नहीं रह सकते, अलग रहने लगते हैं, और स्थिति अगर तलाक तक पहुंच जाती है तो दो परिवारों के लिए ये तनावपूर्ण होता है। विदेशों में तो तलाक होना आम बात है, भारत में भी तलाक के केसेस आज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही शादी खुशी का अवसर है लेकिन इसमें भी तनाव होता है। तो इसको हम समझेंगे एक उदाहरण से, जो एक जोक की तरह है कि एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक लॉटरी का टिकट लिया, 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था, उन्होंने अपनी पत्नी का नंबर दिया और लॉटरी उनकी निकली, यानी लॉटरी खुल गई, तो वो समाचार उनकी पत्नी को मिला क्योंकि उन्होंने पत्नी का नंबर दिया। तो पत्नी ने सोचा मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, तो मैं इनको अगर सीधा बताऊंगी तो कहीं इनकी हेल्थ पर असर ना आ जाए, तो उसने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की। तो फैमिली डॉक्टर ने बोला इनको मेरे पास भेज दो, मैं समझा दूंगा। तो गए वहाँ, तो उन्होंने थोड़ा हेल्थ के बारे में बात की, कुछ न्यूज़ के बारे में बात की, और फिर कहा कि अगर आपको 10 लाख की लॉटरी निकले तो आप क्या करोगे। कहा डॉक्टर 10 लाख मिलेंगे तो मैं एक गाड़ी ले लूँगा, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर आपको 50 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे। कहा 50 लाख मिलेंगे तो मैं एक घर ले लूँगा, किराए के घर में रहते हैं तो एक घर ले लूँगा। फिर कहा आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है क्या करोगे। कहा डॉक्टर क्यों मजाक करते हो, ज़रूर मैंने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट लिया था, लेकिन इतना भाग्यवान नहीं हूँ कि मेरी लॉटरी लग जाए। तो उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है आप क्या करोगे। उसका डॉक्टर अगर ये सच है तो फिर पहले 50 लाख मैं आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। हाँ तो यहाँ भी ऐसा होता है कि जो माता पिता जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है उनको अनेक प्रबंध करने पड़ते हैं, उसमें कई समस्याएं हो सकती हैं, आप लोग सब फैमिली वाले हैं जानते हैं। फिर उसमें कई बार ससुराल पक्ष वालों की भी समस्या हो सकती है। आज दहेज आज भी हमारे समाज में अभी तक भी गया नहीं है। फिर जिनकी शादी होती है उनके लिए नया वातावरण, नए लोग, नई परिस्थितियों में एडजस्ट करना पड़ता है। तो सब खुशी के साथ साथ तनाव भी होता है। ऐसे ही परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, जैसे कहा अचानक असमय किसी की मृत्यु हो जाती है, और अगर वो जिम्मेवार व्यक्ति है तो और ज़्यादा तनाव होता है। ऐसे ही मनी प्रॉब्लम्स, आज धन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। कहते हैं कि धन ही शक्ति है, और सारी भागदौड़ की जिंदगी क्यों है, आज किसके पीछे भाग रहे हैं, धन कमाने के पीछे। ज़्यादा से ज़्यादा धन हम कम से कम समय में कमा लें, ये आज की युवा पीढ़ी तो यही सोच रखती है। फिर उसके लिए चाहे गलत तरीके भी क्यों ना अपनाने पड़े। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। और आज धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। आज लोग धन कमाने के लिए अपने चरित्र की परवाह नहीं करते, अपने संबंधों की परवाह नहीं करते, अपने मूल्यों की परवाह नहीं करते। आज धन संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि बेटा बाप के लिए भी ना। एक ऐसे ही समाचार छपा था कि एक पिता ने अपनी खेती की जमीन बेची, उसको कुछ लाख मिले, और उसके 2 बेटे थे, और दोनों बेटे चाहते थे कि वो पिता हमें वो संपत्ति दे दे जो उनको मिला है, लेकिन पिता ने वो धन नहीं दिया अपने बेटों को, जो भी कारण रहा हो। तो वो दोनों बेटों ने मिलकर के आपस में अपने पिता की ही हत्या कर दी। तो धन के पीछे लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं कि कोई संबंध, कौन सा संबंध है उसकी भी परवाह नहीं। तो धन हमारे जीवन की आवश्यकता है ज़रूर, लेकिन सब कुछ नहीं है। हमें धन कमाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। और धन की भी अपनी एक सीमा है। धन से आप दवाई खरीद सकते हैं, हेल्थ तो नहीं खरीद सकते, धन से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद तो नहीं खरीद सकते, किताबें खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान तो नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए धन जो है जितना हम ईमानदारी से कमाते हैं ना, ऐसे भी हम देखते हैं लोग बहुत धन कमा लेते हैं, उसकी भी चिंता गवर्नमेंट से कैसे बचाएं, इसको फिर चोरों से कैसे बचाएं। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही धन हो, वही हमें तनाव मुक्त रखता है। फिर वर्क प्लेस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे कहा हमारे अधिकारी हैं और अगर वो कठोर स्वभाव के हैं, हम सारा दिन मेहनत करते हैं उसकी तारीफ तो नहीं करते लेकिन थोड़ी भी गलती हो जाए, कोई काम में कमी रह जाए तो अपमानित कर दिया जाता है या चार लोगों के सामने डांट दिया जाता है। तो जैसे बहन सुना रही थी ऐसे अधिकारी से तनाव होता है, क्योंकि हमारे वर्क प्लेस पर तीन लेवल होते हैं, हमारे सुपीरियर होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं और हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं। तो हमारा जो अपर लेवल है उनके पास पावर्स होती हैं, तो अगर उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं होते तो फिर वो हमारे को ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो उससे प्रभावित हो, क्योंकि पावर्स को वो यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना होता है। साथियों के बीच में कंपटीशन, हमारे जो साथी होते हैं उनसे कंपटीशन होता है, लेकिन अगर ये अनहेल्दी कंपटीशन है, अगर वो ईर्ष्या द्वेष पर आधारित है तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है और ऐसा कंपटीशन हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे साथियों से कई बार मतभेद हो जाते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, अब काम उन्हीं के साथ करना है फिर हमें उनका सहयोग नहीं मिलता तो फिर वो तनाव पैदा होता है। कई बार प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाता है, हम चाहते हैं प्रमोशन लेकिन हमारा कोई पिछला रिकॉर्ड ऐसा है या कोई ऐसी गलती हो गई तो डिमोशन माना पद कम कर दिया जाता है। तो ये व्यक्ति को बहुत तनाव देता है, क्योंकि लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कंफर्ट्स। तो व्यक्ति की बदनामी होती है और वो बदनामी झेलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी नहीं है, जहां हम काम करते हैं वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, बहुत पोल्यूशन है, मशीनों का शोर है या काम पर जाना पड़ता है तो बहुत ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है या पर्याप्त स्टाफ नहीं है, ऐसे कई कारण बनते हैं। ऐसे ही ओवर क्वालिफाइड, बहुत पढ़ लिख जाते हैं लेकिन जैसा काम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। कई बार नया काम शुरू करते हैं उसमें भी तनाव रहता है जब तक कि वो एस्टैब्लिश ना हो जाए। तो ये देखा गया एक रिसर्च स्टडी में येल यूनिवर्सिटी में कि 40% एम्प्लॉयज को एक्सेसिव जॉब स्ट्रेस होता है और जब उनके तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए तो उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ गई, इतना फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आजकल जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, मैनेजिंग स्ट्रेस या इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। अब तनाव के बारे में कुछ भ्रम है, क्या भ्रम है? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं या यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कुछ तनाव तो होगा ही, बिना तनाव के ये संभव नहीं है, क्या कहेंगे? तनाव होगा, जो समझते हैं कि तनाव होगा ही अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो वो हाथ उठाएं। अच्छा, और जो समझते हैं कि नहीं बिना तनाव के भी हो सकता है वो हाथ उठाओ, राइट है या रॉन्ग है? अच्छा, अच्छा, अभी आप शांति मन में बैठे ना, इसलिए मेजोरिटी नहीं होगा, उसमें हाथ उठा रहे हैं। तो यहाँ आप ग्राफ में देख रहे हैं कि जब हम काम शुरू करते हैं तनाव में, तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में कैटेकोलामिन्स बनते हैं जो हमारी क्षमता को बढ़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़े समय के बाद ही हमारे शरीर में स्टेरॉइड्स बनते हैं और वो हमें थकाते हैं और हमारी क्षमता कम होने लगती है। तो अल्टीमेटली हमारी क्षमता कम होती है और हम थकते हैं। तो इसीलिए देखने में आता है कि कई बार लोग 35-40 साल की उम्र तक आते आते जो सफलता पाना चाहते हैं पा लेते हैं, जो पद पाना चाहते हैं वो भी मिल जाता है, जितना धन कमाना चाहते हैं वो भी वो कमा लेते हैं, लेकिन अब उन हेल्थ चेकअप कराएंगे तो कोई ना कोई बीमारी शुरू हो चुकी है शरीर में, या तो ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज या फिर हार्ट की बीमारी, जो कहा जितने भी साइकोसोमैटिक हैं उनमें से कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है। अब ये सारी बीमारियां कंट्रोलेबल हैं, यानी एक बार हो गई तो फिर सारी उम्र दवाई लेते रहना पड़ता है, क्योर नहीं होता। फिर सारी उम्र आप दवाई लेते रहेंगे तो जितना आपने कमाया पहले 40 साल में, अब जब तक आप जीने वाले हैं तब तक उस इलाज में खर्च करते रहेंगे। लेकिन अगर हम उमंग उत्साह से काम करते हैं, अगर हम आत्मविश्वास से काम करते हैं, एक दृढ़ इच्छा शक्ति से हम काम करते हैं, तो भी हम सफल होते हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। तो ये एक गलत फहमी है या गलत धारणा है कि तनाव से ही हम सफल होते हैं। फिर ये भी देखा गया कि लोग अपने तनाव के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं। अभी जैसे अभी हमने आपसे पूछा, तो ऐसे एक सर्वे किया गया, 400 लोगों से पूछा गया, तो 80% लोगों ने कहा कि दूसरे लोगों के कारण, परिस्थितियों के कारण उन्हें तनाव होता है। एक सास थी, उसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो उसको पूछा गया आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने क्या कहा, मेरी बहू के कारण, मैं जैसा चाहती हूँ ऐसा वो करती नहीं और ही मेरा सामना करती है, इसीलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो बहू को सिर दर्द रहता था, उसको पूछा आपको क्यों सिर दर्द हो जाता है, तो उसने क्या कहा, मेरी सास के कारण, ये मेरे हर काम में गलती निकालती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे सिर दर्द हो जाता है। वर्क प्लेस पर मैनेजमेंट से पूछा गया तो उसने कहा एम्प्लॉयज के कारण काम नहीं करना चाहते हैं और इनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, मांगे पूरी नहीं करो तो ये यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, सचमुच लोगों से काम कराना बहुत मुश्किल है। और जब एम्प्लॉयज से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट के कारण, मैनेजमेंट काम तो बहुत लेती है लेकिन जो वेतन जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। ऐसे ही माँ बाप को पूछा तो उन्होंने कहा बच्चों के कारण, आजकल के बच्चे हमें कुछ समझते ही नहीं हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। और जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे माँ बाप हमको समझ ही नहीं सकते। तो हर एक की उंगली किसकी ओर है, किसकी ओर है, दूसरे की ओर। जब हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो तीन उंगली किधर आ जाती है, तो अगर एक कमी सामने वाले में है तो पहले तीन कमी किस में है, तो पहले किसको बदलना चाहिए, पर हम क्या समझते, मैं राइट हूं, मैं जो सोच रही हूं कर रही हूं या मैं जो सोच रहा हूं कर रहा हूं वो सही है, दूसरे को बदल जाना चाहिए, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या सोच रहा होता है, वो भी यही सोच रहा होता है कि मैं राइट हूं इनको बदल जाना चाहिए, तो कोई भी नहीं बदलता, ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं और हमारी समस्याएं जीवन में बढ़ती जाती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाती है सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज, हम बदलेंगे तो ही हम दूसरों को बदलने की प्रेरणा देते हैं। एक बार ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ ट्रांसफर होकर के कोई शहर में गए, वहां पर उन्होंने अपार्टमेंट में घर लिया, एक फ्लैट लिया। आजकल फ्लैट आमने सामने बने हुए होते हैं अपार्टमेंट में। तो वो फ्लैट की जो हस्बैंड वाइफ थे वो वहाँ मॉर्निंग में चाय पी रहे थे अपनी बालकनी में, तो सामने वाले फ्लैट की लेडी उस समय कपड़े सुखा रही थी। तो ये जो बहन थी इसको कमेंट करने की आदत थी, तो जैसे ही उसने देखा वो कपड़े सुखा रही है तो उसको लगा कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं। तो उसने कहा देखो इसने कैसे कपड़े धोए हैं। तो पति ने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे दिन भी वो चाय पी रहे थे मॉर्निंग बैठ करके, वो कपड़े सुखा रही थी, आज भी उसने देखा कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं। तो उसने अपने पति से कहा लगता है इसके पास अच्छी क्वालिटी का सर्फ नहीं है। तीसरे दिन भी वो चाय पी रहे थे और वो कपड़े सुखा रही थी, लेकिन आज उसको लगा कि कपड़े बहुत साफ धुले हुए हैं। तो उसने वो भी कहा कि देखो इसने आज तो कपड़े साफ धोए हैं। तो पति ने कहा मुस्कुराते हुए आज मैंने बालकनी का शीशा साफ कर दिया है। हाँ, तो कमी कहाँ थी और देख कहाँ रहे हैं। तो हम भी अपने जीवन में यही करते रहते हैं। हाँ, अपनी कमियां नहीं देखते, अपने को देखना भूल जाते हैं। किसको देखते रहते हैं? हमेशा दूसरों को ही हम देखते रहते हैं। और कई कहते हैं जी हम बहुत बिजी रहते हैं, इतना काम है, हमको टाइम नहीं है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इसलिए हमें तनाव होता है। तो व्यक्ति को काम से तनाव नहीं होता, लेकिन किस भावना से हम उसको करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर जो काम मैं कर रही हूँ मुझे पसंद है, उसे हम दिल से करते हैं, रुचि से करते हैं, तो वही काम हमें खुशी देता है, घंटों भी हम करते हैं। लेकिन जो काम मुझे पसंद नहीं और मुझे करना पड़ता है या मुझसे कराया जाता है, तो ऐसा काम हमें थोड़े समय में भी थका सकता है और हमें तनाव देता है। तो यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं। अगर मुझे कोई काम पसंद नहीं है, हम नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें? उसको चेंज कर दें, उसकी बजाय कोई दूसरा काम करें। लेकिन हमेशा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर अगर हमें वो करना ही पड़ता है तो देन लर्न टू लव योर वर्क। जो भी काम हम कर रहे हैं उसे हम दिल से करें। और फिर अगर फिर भी काम ज़्यादा है तो हम टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो काम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उसे हम पहले कर लें, जो लेस इम्पॉर्टेंट है उसे हम बाद में भी कर सकते हैं, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, या हम किसी का सहयोग लें। हम कह सकते हैं कि काम बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, हमें किसी का सहयोग चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि सब काम उनको ही करना है, कि हमारे जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता है। फिर हम सब काम खुद ही करने जाएंगे तो फिर वर्क ओवरलोड होगा। जो अभी बात की कॉरपोरेट्स के बारे में, हाँ, कॉरपोरेट्स में निश्चित है कि जो कंपनी होती है उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी वो डेडलाइन दे देते हैं कि इतने समय सीमा में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कंपनी लॉस में जाए। तो कंपनी तो लॉस में नहीं जाना चाहेगी, तो उससे प्रेशर आता है। लेकिन कई बार ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, एक बार एक बिजनेसमैन थे और उनकी उम्र हो रही थी, तो उनका कोई बेटा नहीं था, वारिस नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि सही समय है, मुझे एक अपना पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरे बंगले के बाहर जो स्विमिंग पूल है उसे जो एक कोने से दूसरे कोने तक पार करेगा उसे 1,00,000 का इनाम मिलेगा और वो मेरे बिजनेस में पार्टनर रहेगा। और जो भी उन्होंने आयु सीमा लिखी थी उस अनुसार बहुत सारे युवक आ गए, क्योंकि शर्त तो बहुत आसान थी, कुछ मुश्किल था ही नहीं। पर देखा कि वो स्विमिंग पूल में सांप है, तो वो सब देख ही रहे थे, कोई कूद नहीं रहा था। इतने में एक युवक कूदा एक कोने से और वो उसको पार करते हुए पूल को बड़ी मुश्किल से, सांपों से अपने को बचाते हुए दूसरे किनारे पर बाहर आ गया। तो वहीं खड़े थे बिजनेसमैन, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, कहा बेटा मुझे तुम्हारे ही जैसा साहसी युवक चाहिए था, तुमने मेरी शर्त पूरी की है, अब तुम्हें 1,00,000 का इनाम मिलेगा और मेरे बिजनेस की पार्टनरशिप मिलेगी। तो उसने कहा कि ना तो मुझे 1,00,000 चाहिए ना बिजनेस की पार्टनरशिप, मुझे पहले उसको ढूंढने दो जिसने मुझे इसमें धक्का दिया है। लेकिन उस धक्के ने क्या कर दिया, उससे वो करा लिया जो वो समझ रहा था कि वो नहीं कर सकता। तो कई बार जो हमारी क्षमता हमारे अंदर होती है वो तब हमें पता चलती है जब वो चैलेंज हमारे सामने आता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी भी है। तो इसीलिए जो थोड़े प्रेशर्स होते हैं वो कई बार हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और वो हमारी क्षमता को विकसित करते हैं। अब अपने तनाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम ज्यादातर मनोरंजन करते हैं। आज तो आजकल हमारे पास मनोरंजन का साधन हमारे हाथ में ही है, तो आज सारा दिन हम व्यस्त हैं, पूरे दिन, शाम को घर आते हैं तो रिलैक्स होने के लिए कोई पार्टीज करते हैं, क्लब्स में जाते हैं या रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, जो पुरुष हैं ज़्यादातर फिर ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, जो भी। तो ये जो भी मनोरंजन के साधन हम अपनाते हैं थोड़े समय के लिए हमारे तनाव को बिल्कुल ख़त्म, उस समय हमें लगता है कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, और फिर जब वो समस्या फिर से हमारे सामने आती है फिर हम तनाव में आ जाते हैं। तो क्या किया हमने, तनाव को पोस्टपोन कर दिया। जैसे मानो बुखार होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, एक पैरासिटामोल की गोली ले लेते हैं जो बुखार उतारती है, तो 2-4 घंटे के लिए बुखार उतर जाता है। फिर अगर जो जर्म्स हैं जिसके कारण बुखार आ रहा है वो खत्म नहीं हुए तो दोबारा बुखार आ जाता है। तो हमें जो सही तरीका है उसके लिए कि एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा या जो भी उस बुखार को पैदा करने वाली बीमारी है उसका इलाज करना पड़ेगा, तब बुखार ठीक होगा। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि थोड़े समय के लिए हम रिलैक्स, लेकिन फिर वापस तनाव में। तो ये रियल रेमेडी नहीं है। वो क्या है, हमें ये समझना होगा कि तनाव का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण क्या है, वो है हमारे सोचने के तरीके में। किसी भी परिस्थिति में हम किस दिशा में सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और ज्यादातर जो भी नेगेटिव परिस्थितियां, तनाव हमें कब होता है, तभी जब हमारे पास ऐसी कोई समस्याएं होती हैं या प्रेशर्स होते हैं, तो हम ज्यादातर उसमें नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान होता है, है ना। अब क्या होगा, कैसे होगा, हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जब हम इस तरह से नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं, माना हम अनिष्ट की कामना, या जब मेरा हानि क्या हो जाएगी, मेरा बुरा क्या हो जाएगा, वो हम ज़्यादा सोचते हैं। तो फीलिंग्स होती हैं पैनिक, फियर एंड वरी, और उसका असर हमारे व्यवहार पर आता है और हमारे कार्य पर भी आता है। लेकिन हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, है ना। और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं कि जो भी है हम करेंगे, कर लेंगे, एक कॉन्फिडेंस हो अपने अंदर, तो क्या होता है, तब हमारी फीलिंग्स होती हैं पेशेंस, पीस एंड करेज, और कैसी भी परिस्थिति को हम पार कर पाते हैं। तो हम जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मानो आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और आप अपने घर में बेटी है, बहू है, मेड है, जो भी उसको कहते हैं चाय बना कर ले आओ। वो चाय बना के लाती है, पर जो भी कारण बनता है वो नज़दीक आते ही सारा बर्तन गिर जाता है, माना क्रॉकरी गिरती है, चाय बिखर जाती है और वो टूट जाती है। अब हम दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक तो अगर हम नेगेटिव हैं तो गुस्सा करेंगे तुरंत, है ना, नाराज होंगे, देखकर काम नहीं करते हो, हमेशा ही ऐसी लापरवाही करते हो, जो भी। अब हमने गुस्से में जो बोला वो सामने जो काम करने वाला है उसको भी टेंशन और भय, और जो मेहमान है जिसके लिए हमने चाय बनवाई वो भी बड़े असहज हो जाएंगे उस बात को लेकर के। अब दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि गिर गया, ठीक है हमने देखा, हम कहेंगे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, और हम उसको समेटने में मदद करने लगे कि हम अब दूसरी चाय बना लेते हैं। तो परिस्थिति पैदा हुई, लेकिन हमारा सोच कैसा है। अगर हम नेगेटिव हैं तो हमने तनाव पैदा किया, और अगर हम पॉजिटिव हैं तो वही परिस्थिति में हम बिना तनाव के उसको पार कर गए। हाँ, आप ट्रैफिक में होते हैं, मानो कोई गाड़ी लगा देता है, तो हम दो तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव हैं तो गुस्सा करेंगे, जिसने गाड़ी लगाई उसको गालियां देना शुरू करेंगे, अगर वो हाथ आ गया तो उसको दो चार लगाने में भी देरी नहीं करेंगे न? और अगर पॉजिटिव हैं तो टेंशन पैदा करते हैं ना ऐसे, और अगर पॉजिटिव हैं तो हम सोचेंगे हम ट्रैफिक में हैं, कभी हो जाता है ऐसा, अब आगे से जब भी ट्रैफिक में होंगे हम इससे भी सावधानी से गाड़ी चलाएंगे ताकि ऐसा ना हो, और हम निकल जाएंगे। तो ये रिस्पॉन्स हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा सोच रहे हैं। ऑफिस में काम करते हैं, दो लोग गलती करते हैं, बुलाते हैं अधिकारी जो हैं उनको बुलाते हैं, तो पहला व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है और सॉरी बोलता है, बात वहीं खत्म हो जाती है कि आगे से हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं वो गलती मानता ही नहीं है, और ही बहस करने लग जाता है ना, और ब्लेम करता है दूसरों को, बात बढ़ने लगती है, तो दोनों के बीच में टेंशन, और वो तब तक रहेगा जब तक कि फिर से उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो एक ही जैसी परिस्थिति कई लोगों के सामने होती है, लेकिन हरेक का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, क्योंकि हरेक का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। एक उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति जो है उसे टेंशन हो रही है, और दूसरे को कुछ भी नहीं, उसको लग रहा है ये तो मेरे लिए एक अवसर है, ये हम करेंगे तो और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, तीसरा उससे ही डिप्रेशन में चला जाएगा मानो, और चौथा जैसे उसके लिए कुछ हुआ ही नहीं। तो हरेक का रिस्पॉन्स अलग अलग है, क्योंकि हरेक उसको अलग अलग ढंग से सोच रहा है। तो अभी हमें क्या करने की आवश्यकता है, अगर हम तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हमें सही दिशा में सोचना है। आपने पॉजिटिव थिंकिंग का पूरा सेशन सुना, अभी मॉर्निंग में विस्तार से सुना कि कैसे हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। हालांकि ये कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है। मेरे हाथ को मुझे ऊपर करना है, नीचे करना है, आगे करना है, पीछे करना है, इजी है क्योंकि ये फिजिकल है, लेकिन मेरे मन को मुझे यही सोचना है ये नहीं सोचना है, नहीं होता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, और इसीलिए मन को हमें अभ्यास देना पड़ता है, और वो अभ्यास क्या है, मेडिटेशन। तो रोज जब हम योग अभ्यास करते हैं तब हम कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेनिंग देते हैं पॉजिटिव सोचने की, और राजयोग अभ्यास में आप सीख रहे हैं ये कि राजयोग अभ्यास में हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, जैसे मॉर्निंग सेशन में आपने समझा, तो हम अपने आप को देखते हैं। सामान्यतः हमारा व्यवहार क्या होता है, हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को देखना भूल जाते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है मेरी कमी कहाँ है, मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है, हमारी आधी समस्याएं तो वहीं खत्म हो जाती हैं। फिर हम आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो वो सारे सकारात्मक गुण हैं, तो वैसे ही हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है। फिर योग के दूसरा स्टेप में हम परमात्मा से संबंध का अनुभव करते हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं, शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, तो उनसे मन जब जुड़ता है तो यही शक्तियां हमें मन में प्राप्त होने लगती हैं, हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, और बड़ी बात भी हमें छोटी लगती है, यानी परिस्थिति हमें खेल लगती है और उसे हम सहज पार कर लेते हैं। और इसीलिए देखा गया कि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए इस दुनिया में, उनकी एक विशेषता थी कि कभी भी जीवन की कोई भी कठिनाइयां, उन्हें कठिनाइयां लगी ही नहीं, हालांकि एक आम इंसान से ज्यादा कठिनाइयां उनके जीवन में आई। जो भी महापुरुष हुए हम देखते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, क्राइस्ट थे, जो भी ऐसे आध्यात्मिक लोग हुए हैं, लेकिन बहुत सहज वो उसे पार कर पाए क्योंकि वो ईश्वरीय बल अपने में वो महसूस करते थे। तो राजयोग अभ्यास की जो स्टडीज हैं, विशेषकर जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, उसमें ये देखा गया कि योग में भी हमारी बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होती है। जैसे स्ट्रेस में बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होती है, लेकिन उससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, वो हानिकारक है, लेकिन योग अभ्यास के समय हमारे शरीर में जो केमिकल्स बनते हैं वो लाभदायक हैं, और वो हैं सीरोटोनिन्स, एंडोर्फिन्स एंड कैफेलिन्स, और इनसे हमारी हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारा रेस्पिरेशन कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हमारा सिस्टम बैलेंस होने लगता है, और हमारा तन भी स्वस्थ होता है। तो मन भी स्वस्थ होता है और तन भी स्वस्थ होता है, और इसीलिए हम सुनते हैं कि योग को स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है, कि योग से हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमें वो योग अभ्यास फिर करने की आवश्यकता है। अब हमारे जीवन में, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, वर्क प्लेस की लाइफ है या फैमिली लाइफ है, ये तीन बातें आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। यानी हम सभी कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्य हम सभी करते हैं, और जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मानो आप ऑफिसर हैं, काम पर जाते हैं, 8 घंटा आप ऑफिशियल बने रहते हैं क्योंकि आपको लोगों से काम करवाना है, लेकिन जब घर आते हैं तो अब ऑफिसर नहीं है, अब घर में आप पिता हैं, पति हैं या पुत्र हैं, तो घर वालों को क्या चाहिए आपसे? अपनापन चाहिए, स्नेह चाहिए, लेकिन हम यहाँ भी अगर ऑफिशियल बने रहते हैं, यानी जहाँ हमारा जैसा रोल है वैसा रोल प्ले नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? परिवार को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, और उस बात को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है। फिर मानो वर्कर हैं, ऑफिसर नहीं है, वर्कर हैं, काम करते हैं, जैसे कहा हमको सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और हमको चुप भी रहना पड़ता है क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो हमारे भविष्य पर उसका असर हो जाता है, तो गुस्से को पीते हैं। फिर घर आते हैं ना तो गुस्सा निकाल सकते हैं, तो बच्चा सामने आया तो बच्चे पर गुस्सा निकाल देंगे, पत्नी आई तो पत्नी पर निकाल देंगे, तो अब क्या हो रहा है? ऑफिस का टेंशन कहाँ लेकर आ रहे हैं? हम घर में लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग घर का टेंशन कहाँ लेके जाते हैं? ऑफिस में लेकर जाते हैं। तो माना जहाँ हमारा जैसा रोल है वैसा हम प्ले नहीं, रोल से हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। तो राजयोग में हमने क्या सीखा है? मैं कौन हूँ? जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और संसार में ये कर्म करने के लिए मुझे मिला हुआ है। तो फिर हमको अपने रोल से डिटैच होना आसान हो जाता है, और जहाँ हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले कर पाते हैं। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहाँ पर हनुमान का रोल प्ले करने वाला नहीं आया था, तो मैनेजर ने देखा कि बहुत पब्लिक आ चुकी है, मुझे शुरू करवा देना चाहिए, तो उसने अपने एक वर्कर को बुलाया और कहा देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहनकर आ जाओ, पहला सीन जो अभी है वो बहुत आसान है, रावण की दरबार लगी हुई होगी और रावण तुमसे पूछेगा तुम कौन, तो तुम कहना मैं श्री राम भक्त हनुमान, तुमको इतना ही करना है, फिर बाद में हम संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने हनुमान का ड्रेस पहना और वो स्टेज पर आ गया, तो उसने पब्लिक को देखा, उतने में ही रावण ने जोर से बोला, क्योंकि रावण का तो रोल ही होता है, तो उसने जोर से उससे पूछा तुम कौन। तो पहले उसने बेचारे ने कभी एक्टिंग की नहीं थी ना, घबरा गया वो, तो उसने कहा मैं रामलाल रिक्शा वाला। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि अगर हम टेंशन में आ जाते हैं तो हमारा रोल हमें जैसे प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। फिर है दिनचर्या, हमारी दिनचर्या कैसे आज मॉडर्न डे लिविंग में कैसी है। सारा दिन हम काम करते हैं, शाम को रिलैक्स होने के लिए हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल में जो भी हमें देखना है सोशल मीडिया पर। तो कई भाई कहते हैं बहन जी हम सिर्फ न्यूज़ देखते हैं, तो क्या न्यूज़ से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं? हो जाते हैं। बहनें कहती हैं हम सीरियल देखते हैं, है ना, तो जो सीरियल देखते हैं क्या वो हमें स्वस्थ मनोरंजन देते हैं या और ही हमारी भावनाओं को दूषित कर देते हैं? और जब हम मीडिया जो भी टीवी के सामने हैं मोबाइल पर हैं, वो लोग देर रात सोते हैं, 12 एक बजे तक सोते हैं। आज की जो जीवन शैली है वो देर रात सोना और सुबह देर से उठना। और कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और लेट टू बेड लेट टू राइज हम समझ सकते हैं, तो क्या होता है हरी वरी एंड करी, उठते हैं टाइम पर, काम पर जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत सारे काम एक साथ दिखते हैं, तो कम समय में काम पूरा करना है तो दिन ही जो शुरू होता है वो तनाव से शुरू होता है। फिर काम करना शुरू करते हैं तो कई लोग देखते हैं इतना काम है तो एक साथ कई काम करना शुरू कर देते हैं, एक भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते। तो सही तरीका क्या है, पहले जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करें, फिर उसके बाद हम दूसरा काम लें, तो उसको कहते हैं व्यवस्थित रूप से हम अपना कार्य करें। कुछ लोगों को काम करना ही नहीं है, वो टाइम पास करते हैं, भले ही काम पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या जो भी बिजनेस है, सारा दिन हो गया गपशप करेंगे आपस में, चाय कॉफी पी करके सिगरेट पी करके टाइम पास करेंगे, कुछ काम हुआ ही नहीं। फिर कहते हैं हम तो रिलैक्स रहते हैं, जितना हो जाता है उतना कर लेते हैं। तो तनाव मुक्त होने का ये मतलब नहीं कि हम आलसी हो जाएं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करें, तभी हम जो हमारा कार्य हम करना चाहते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। तो हमारी दिनचर्या समय से सोना, समय से उठना, समय से काम करना और समय से भोजन करना, जितनी व्यवस्थित चलेगी उतना हम तनाव मुक्त हो पाएंगे। फिर हमारे संबंध, हमारे जो संबंध हैं वो दो तरह से कार्य करते हैं हमारे जीवन में। संबंध अगर अच्छे हैं तो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपना सुख दुख बांट लेते हैं। तो कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है, क्योंकि हमें सहयोग मिलता है, उसका जो भी अनुभव है उससे हमें हिम्मत मिलती है और इससे हमें हल्कापन महसूस होता है। लेकिन अगर संबंधों में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो फिर वही संबंध तनाव पैदा करते हैं। अमेरिका में देखा गया लोग पेट्स रखते हैं ना, विदेशों में लोग बहुत पेट्स रखते हैं, ये कुत्ता बिल्ली पालते हैं। तो ये स्टडी की गई कि जो अपने पेट से बातें करते हैं उन्हें हार्ट की बीमारी कम होती है। तो ये जानने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों है, स्टडी मतलब यही होता है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपने जानवरों से बात करते हैं, आपकी फैमिली है फ्रेंड्स हैं उनसे बात नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि ये जानवर चुपचाप सुनते हैं, इनका हमें नहीं सुनना पड़ता। हम किसी इंसान से बात करते हैं तो उसका भी सुनना पड़ता है, हमें सिर्फ सुनाना है, सुनना नहीं है। तो आज ये स्थिति है संबंधों में कि हम किसी की बातें सुन नहीं सकते, सुनने की क्षमता बहुत कम है, अपनी भले सुना देंगे। तो यहाँ पर भारत में तो हम पेट्स नहीं रखते हैं, 80% घरों में पेट्स नहीं होते है ना, कोई कोई जो है वो पेट्स रखते हैं। तो फिर यहाँ आप राजयोग सीख रहे हैं और राजयोग में हम भगवान से बातें करते हैं, और भगवान से जब हम बातें करते हैं तो वो साइलेंट लिसनर हैं, भगवान भी चुपचाप हमारी बातें सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है, वो हमारी बात किसी से कहेगा भी नहीं, और फिर हमें शक्ति भी मिल जाएगी, पर भगवान से वो शक्ति भी मिल जाती है कि हम उससे पार हो जाएं। इसीलिए ये संबंध भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम दुख के समय भगवान को ही याद कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी संबंधों में जो नेगेटिविटीज आती हैं, है ना, आप में से भी सब कुछ कुछ ने शेयर किया, एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हमारे समीप संबंधों में हमारी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, मेरी पत्नी है, इसको ये सब मेरे लिए करना ही चाहिए, कर रही है तो ठीक, जिस दिन नहीं किया उसी दिन गुस्सा आता है, नाराज हो जाते हैं, या पत्नी सोचती है मेरे पति की ये जिम्मेवारी है, इनको ये सब करना ही चाहिए, या मेरा बेटा है इसको मेरा कहना मानना ही चाहिए, किसी दूसरे के बेटे को मैंने कोई बात कही उसने नहीं मानी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है, पर मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि उसमें मेरापन है, अधिकार, जहां हम अधिकार रखते हैं, मेरापन रखते हैं, वहां पर हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम बहुत दुखी होते हैं। तो यहां हमें ये समझना है कि हमेशा हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान का सोचने का तरीका अपना अपना है, जैसा हम सोचते हैं वो ही दूसरा भी सोचता है, कोई जरूरी नहीं है। तो संबंधों में हम अपेक्षा रखने की बजाय देने का भाव रखें, हम कितना कर सकते हैं उनके लिए, ना हम उनको कितना सहयोग दे सकते हैं, कितना प्यार दे सकते हैं, या जो भी उनकी आवश्यकता है वो हम कितना पूरी कर सकते हैं, इसको कहते हैं निस्वार्थ रूप से संबंधों में अपने कर्तव्य का पालन करना, तो फिर हमें दुख नहीं होगा। अपेक्षा ही नहीं है तो दुख नहीं होगा, लेकिन अपेक्षा है और पूरी नहीं हो रही। तो एक बार ऐसे ही एक भाई थे, उन्होंने कहा बहन जी मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मुझे पता है क्यों, उसका कारण है कि मेरे माता पिता जब हम छोटे थे उनका देहांत हो गया और मेरे भाई बहनों की मैंने परवरिश की, आज वो सभी योग्य हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, अब स्थिति ये है कि मुझे उनका सहयोग चाहिए, लेकिन वो मुझे सहयोग देना तो दूर, मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया, तो मुझे बहुत दुख होता है। और डॉक्टर कहता है तुम सोचो मत, सोचोगे तो तुम्हें दोबारा हार्ट अटैक हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, क्या कहेंगे, नहीं सोचना चाहिए ना। लेकिन व्यावहारिक जीवन में ये कहना जितना आसान है उतना उसको अपने जीवन में अनुभव में रखना इतना आसान नहीं है। तो हम वो अपेक्षा रखते हैं कि हमने इनके लिए इतना किया जब इनका टाइम था, अब जब हमारा टाइम आया तो आज ये हमारे साथ कैसा कर रहे हैं। तो यहाँ यही कि जब वो हमारा समय था हमने अपना कर्तव्य किया, वो श्रेष्ठ कर्म का फल हमारे साथ है ही, वो हमें उसका प्रतिफल देते हैं तो भी ठीक, नहीं देते हैं तो भी ठीक, जिसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डालो, तो भगवान है ना उसका फल देने वाला हमें, तो हमें वो स्वार्थ रखना ही नहीं चाहिए। और संबंधों में कई बार जेलसी, हेट्रेड, एंगर ये भी होता है, हम बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका बहुत अलग सेशन भी इसके ऊपर होने वाला है। तो जेलसी में आ जाते हैं, देखते हैं मेरे संबंधी हैं, मित्र हैं, उन्नति कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं, तो ईर्ष्या होने लगती है, पर कहते हैं चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है। तो किसी से भी ईर्ष्या करने की बजाय हम ये सोचें कि अगर हमें प्रगति करना है तो हम क्या करें, हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपने गुणों का विकास करें तो हम भी उन्नति करेंगे, तो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। और नहीं तो हम दूसरों से तुलना करते हैं, पर हर एक के कर्म और प्रारब्ध अलग अलग हैं, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। तो हम दूसरों को देखेंगे तो एक कहावत है, दूसरों की थाली में लड्डू बड़ा ही दिखाई देता है ना, लड्डू मेरे पास भी है लेकिन दूसरे का लड्डू मुझे बड़ा दिखता है। तो कभी भी दूसरे की सफलता और दूसरे की उन्नति, उससे हमें खुश होना चाहिए, उनके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए और हम अपनी उन्नति कैसे करें उसका प्रयास हम करें। तो ईर्ष्या करने की बजाय शुभ भावना रखें हम। और 3 A's का फार्मूला हम लास्ट में अगर अपनाते हैं, एक्सेप्ट ऑल्टर एंड अवॉइड, तो भी हम काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रह सकते हैं। एक्सेप्ट करना, सभी बातें जीवन में हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे हम स्वीकार कर लें। जैसे मानो कोई व्यक्ति हमारे परिवार में है या जहां हम काम करते हैं उसका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है और हम कोशिश करते हैं तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते, तो फिर हम वो जो हैं जैसे हैं उनको हम स्वीकार करें, उनको समझ कर चलें। तो उनके साथ रहने में, उनके साथ काम करने में हमें फिर तनाव नहीं होगा, और नहीं तो हर दिन हम वही महसूस करते रहेंगे। कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में अनहोनी हो जाती हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो उसे हम स्वीकार करें कि जो हो गया ठीक है, अब आगे के लिए उसका समाधान या उपाय क्या है वो हम सोचें। फिर ऑल्टर यानी परिवर्तन करना, तो जो बातें जीवन में हम परिवर्तन में ला सकते हैं वो है हमारा स्वयं का स्वभाव। अगर मुझे समझ में आता है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या मुझे ईर्ष्या हो जाती है, मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, बहुत जल्दी हम फीलिंग में आ जाते हैं किसी भी बात को लेकर के, तो हम अपने को परिवर्तन करें। हो सकता है उसमें हमें कुछ समय लगे, थोड़ा उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़े। हम सीख रहे हैं, ये राजयोग सीख रहे हैं, राजयोग हमें स्वयं के परिवर्तन में मदद करता है। तो हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो काफ़ी समस्याएं तो हमारी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। फिर कुछ बातों को हमें अवॉइड करना होता है, अवॉइड करना यानी ध्यान नहीं देना। आज ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है ना, संसार के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, मेरे ड्राइंग रूम में या मेरे मोबाइल में ही, लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं, तो हम तक पहुंच जाता है विद इन मिनट्स, और हम उसे देखते हैं सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पर हम यहाँ घर बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। तो फिर ऐसी बातों को हम देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने, यानी उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, तो उसको कहते हैं साक्षी होकर के देखना। या तो देखो ही मत, अगर देख भी रहे हैं तो फिर वो साक्षी होकर के उसे देखें। हमारे आसपास भी कई घटनाएं होती हैं जो अशांति पैदा कर सकती हैं, पर अगर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं तो हम उस पर ध्यान ही ना दें। तो इस तरह से यदि परिस्थितियों में हम सकारात्मक आशावादी सोच रखते हैं और उसके लिए प्रतिदिन हम आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा मन सकारात्मक नहीं हो पाता है, तो फिर हम काफ़ी हद तक तनाव मुक्त, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का अनुभव करते हैं। तो 2 पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करूंगी। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ओम शांति। तो अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा।
ये मत मुश्किलों से कहते।